श्रीमत रूपी हाथ और साथ। सुबह से ही अमृत वेले से ही हम सब लोग इसमें लगे ही रहते हैं। और भाई जी अभी जब परिचय दे रहे थे तो मुझे एकाएक ख्याल आया, इन्होंने और तो परिचय दे दिया लेकिन मेरा एक परिचय नहीं दिया, और जो मैं समझता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट परिचय है, कौन सा? साकार बाबा मामा की पालना का सौभाग्य मिला, और अंतिम समय में भी जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो उस समय हम बहुत दूर थे और बाबा ने अपने पास बुला लिया, तो 17-18 जनवरी को हमें बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का भी मौका मिला। हम तो समझते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़े से बड़ा अवार्ड तो यही है, कलप कलप का संगम युग का ये अवार्ड कि भगवान के साथ रहने का एक मौका मिला। इसीलिए ये श्रीमत रूपी हाथ और साथ ये बड़ी सहजता से अनुभव करते चलते हैं। हाथ और साथ कहते हैं ना, दोनों में क्या फर्क है हाथ और साथ में? जब हम बोलते हैं श्रीमत रूपी हाथ या कोई भी हाथ और साथ, अंतर पता चलता है? बोलिए। बहुत अच्छा। और बाबा के साथ फिजिकली हाथ और साथ में क्या फर्क होता है? हाथ तो जब से पैदा होते हैं 24 घंटे साथ ही है, कंटिन्यूअस है, साथ में लगा रहता है। और जो साथ है, साथ का मतलब साथ के बीच में दूरी भी हो सकती है, अलग अलग भी वो साथ हो सकता है। तो इसीलिए बाबा को हाथ और साथ कहने का की आवश्यकता पड़ी कि एक तो यही हो हाथ कि 24 घंटे कई चीज बाबा कहता है, श्वासोश्वास मुझे याद करो मेरी श्रीमत है। बाबा कहता है कि 8 घंटा कम से कम याद रखो, देही अभिमानी सदा रहो आदि आदि जो भी बातें कही हैं वो 24 घंटे वाली हैं, वो हाथ से जैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ का मतलब कि वो अगर दूर भी है, पास में भी नहीं है, लेकिन दूर से भी वो साथ का अनुभव करा सकता है। बहुत दूर बाबा जो बोलता है ना कि बस मेरे पास, बाबा ने कहा एक मुरली में कहा था कि मेरे पास हर बच्चे का टीवी है, याद है ना? और वो जब भी कोई बच्चा कोई भूल करता है, कमी कमजोरी उससे प्रदर्शित होती है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है और फिर बाबा का ध्यान उस टीवी की तरफ जाता है। बाकी 50 टीवी रखे हों, 40 ऑफ हों और 2-4 ऑन हो, तो ऑन की तरफ ही ध्यान जाएगा ना। तो हम बच्चों के भी सबके टीवी बाबा के पास हैं, और कभी भी कोई कमजोरी अगर आती है मनसा वाचा कर्मणा में, संबंध संपर्क में कोई भी, तो वो टीवी ऑन होता है और बाबा देखता है। फिर बाबा क्या करता है? बाबा उस बच्चे को सकाश देता है, शक्ति देता है कि वो इस कमजोरी से निकल आए, इस कमजोरी के वशीभूत न हो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न कर ले। तो उसके लिए बाबा ने क्या बताया है, कौन सी श्रीमत दी है, हमारी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर हो। बाबा तो दे रहा है, सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, लेकिन अगर हमारी अपनी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं होगी तो हम उस सकाश को कैच ही नहीं कर सकेंगे, और फिर उस कमजोरी से बाहर कैसे आएंगे और विकर्म हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है, एक तो सदा ये बुद्धि में रहे कि मुझे बुद्धि की लाइन अपनी क्लीन और क्लियर रखनी है। दूसरी बात, बाबा ने हाथ और साथ का विशेष वर्णन किस कारण से किया है, क्योंकि श्रीमत रूपी हाथ और साथ जो है, तो बाबा ने कहा अभी बच्चे जब से आए हैं तब से ज्ञान में तो हम सब चल ही रहे हैं, समय प्रति समय परिस्थितियां भी आती हैं, पेपर भी आते हैं, और उन सब के कारण क्या होता है कि हमारे अंदर हलचल बहुत हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि अब समय अनुसार पेपर बदलते रहते हैं, अब कोई पहली दूसरी केजी में होगा, क्या पेपर होगा, पांचवी छठी दसवीं बारहवीं और एमटेक इंजीनियरिंग पीएचडी पहुंचेगा, पेपर बढ़ते और ज्यादा कठिन होते जाते हैं। तो जब पेपर बढ़ते जाते हैं तो व्यक्ति को उसी के अनुसार अपनी बुद्धि को शार्प करना होता है, चलना होता है। तो ये पेपर जो है ना, अभी तक तो जो भी पेपर बाबा ने शुरू में बताए थे जब से हम ज्ञान में आए, तो वो पेपर साफ माया नजर आती थी कि ये माया है ये ज्ञान है। कोई भी अनुक्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, निगेटिविटी है, जितने भी ऐसे हैं वो देखने में ही आते हैं, दूर से ही पता चल जाता है क्रोध का ये रूप है, लोभ है, अहंकार है, तो वो माया का स्वरूप देखने में आता है। वैसे विघ्न आते हैं ना, हम सबके सामने विघ्न और माया में क्या अंतर है, विघ्न और माया में क्या अंतर है? विघ्न जो है वो बाहर से आता है और माया अंदर से आती है। ये बहुत बड़ा, आप सेंटर जाने के लिए तैयार हुए, बाहर निकले, हाँ देखा गाड़ी पंचर है, हवा नहीं है, अब सुबह सुबह का टाइम, उस समय कोई दुकान तो खुली नहीं होगी, तो ये तो हो गया विघ्न, स्थूल में विघ्न आते हैं, और फिर उसके परिणाम स्वरूप जो मन के अंदर संकल्प चलते हैं वो माया का रूप ले लेते हैं। अरे भाई क्या, आज तो गुरुवार था, आज तो जाना ही था, भोग का दिन था, भोग लगाया था, और जो भी मन के अंदर अब क्या करें, चलो ढूंढते हैं कोई रिक्शा को, कोई नहीं मिल रहा है, और इस तरह मन के अंदर संकल्प विकल्प कमजोरियां, वो जैसे माया है। तो इसीलिए जहां तक हो विघ्न तो आएंगे ही आएंगे, जब तक परिस्थितियां हैं, रहते हैं हम लोग ज्ञान में हैं, तो विघ्न तो आएंगे ही, लेकिन उसे हमें ये देखना है कि माया के रूप में हम परिणित न होने दें, क्योंकि वो माया हमारे अंदर की चीज है, हमारे संकल्प की चीज है, विघ्न पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो बाहर की चीज है। बाहर कर्फ्यू लग गया, ये प्रॉब्लम्स स्थूल आ गई, लेकिन अंदर संकल्प विकल्प व्यर्थ कमजोरियां वो हो, वो फिर भी हमारे वश की चीज है। तो इसीलिए उसे हमें ये देखते चलना है। तो समय के अनुसार हमें अपने को बदलते चलना है। ज्ञान में हम सब अलग अलग समय से ज्ञान में आ रहे हैं, किसी को 20 साल हुए होंगे, 40 साल, 50 साल, किसी को एक दो साल भी हुए होंगे, कम समय भी होगा, लेकिन माया का स्वरूप लगभग सबके सामने शुरू से सेम होता है और फिर उसको हम पार करते चलते चलते अनुभवी बनते चले जाते हैं। तो इसीलिए अभी माया के कैसे स्वरूप आने हैं, अभी तक तो माया आती रही और हम कहते रहे अरे क्या करें, क्रोध आ जाता है, हम चाहते नहीं क्रोध करना, क्रोध आ जाता है, फलानी परिस्थिति आ गई, फलाने ने झूठ बोला, ये करा तो मुझे क्रोध आ गया। इसी तरह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष कोई ना कोई के कारण होते हैं और वो कारण विजिबल होते हैं, दिखते हैं। ईर्ष्या भी आएगी, हमें अब चूंकि ज्ञानी हो गए हैं तो पता मालूम है, अच्छा ये देखो उसकी उन्नति हो रही है और उसकी वजह से मुझे ईर्ष्या हो रही है, भले हम स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ईर्ष्या, घृणा, नकारात्मकता जीवन में, क्रोध, कोई भी चीज है उसके स्वरूप से हम अभी तक पहचान सके हैं। लेकिन बाबा ने बताया है, गौर से सुनने की बात है, अब माया के ऐसे रूप आएंगे कि उस रूप को आप पहचान ही नहीं सकेंगे कि ये माया है। देखो गलत और सही उसमें तो डिस्टिंग्विश करना आसान है, पहचानना आसान है, लेकिन सही और सही, दोनों ही सही लग रहे हैं, उसके बीच में पहचानना बड़ा मुश्किल है। इस कारण से ये इसके लिए बुद्धि की कुशाग्रता चाहिए। तो बाबा ने क्या बताया है कि अब एक तो बच्चों के सामने है, बच्चों को किन शक्तियों की अभी आवश्यकता है, कौन सी शक्ति होनी चाहिए, सबको मालूम होगा, निर्णय करने की या परखने की शक्ति, बिल्कुल ठीक, लेकिन क्या निर्णय और क्या परखना है, क्योंकि अभी तक तो जो परखते रहे कि ये काम क्रोध लोभ मोह देखने में आते हैं, ये विकार है, परख लिया, उनसे किनारा कर लिया, अब इनके बड़े मीठे रूप देखने में आएंगे और आते हैं, जिसे बच्चे परख नहीं पाते और उसके वशीभूत हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे कबीर ने भी कहा है ना, कबीर का फेमस है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जिससे बैर होगा उससे तो पता चल जाएगा ये माया है, विकार है, कमजोरियां हैं, जिससे दोस्ती होगी, मीठा होगा, उससे दिल की बात करते रहेंगे तो वो तो लगेगा कि हाँ ये दोस्त है और ये माया नहीं है, विकार नहीं है। लेकिन अब बाबा ने बताया है ये भी माया है, विकार है। तो बात चल रही थी जिनसे स्नेह है, प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग है, पहचानते हैं, तो वो सब तो लगता है ये सब तो ज्ञान युक्त है, और जिससे बैर भाव है, किसी ने हमारे मार्ग में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, किसी कोई नेगेटिविटी की भावना है, और तो उसका हमें आभास होता है कि ये जैसे दुश्मन है, तो अभी तक तो पहचानते हैं ये है। लेकिन चूंकि बाबा ने कहा है सबसे स्नेह रखे, तो जिन जिन से हरेक से स्नेह होता रहेगा वो, तो उसमें हमें ये देखना है डिफरेंस, किससे मेरा अति इसमें है। बाबा ने कहा कोई भी चीज की अति जो है वो खराब है, एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड जैसे कहते हैं। तो अति जिसको दिल की बात बताए बिना रह नहीं सकते, कोई ऐसी घटना हो जाती है बताते हैं, हम सोचते हैं इससे दिल हल्का हो जाएगा आदि आदि। तो जो ऐसी बात अगर होती है तो क्या होता है, वो माया का ऐसा मीठा रूप होता है, वो धीरे 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 हमें बाबा से दूर कर देता है। फिर हमारे लिए वो ही बाबा का स्वरूप हो जाता है। ठीक है बाबा है, बाबा को तो कहते हैं, लेकिन बाबा से तो उत्तर मिले ना मिले, पहचान नहीं पाते, कई बातें मन के अंदर संकल्प विकल्प बात है। तो इसीलिए उनके तरफ अति झुकाव हो जाता है। तो वो उस कारण से ही हमारे ज्ञान में काफी होते हैं जो बाद में कई बार चले जाते हैं, बाबा भी नाम रूप नाम दे देता है। कई बार ऐसा बोलता है बाबा, बताता है कि बस वो आत्मा के प्रति वही जैसे हमारा भगवान हो जाता है। ऐसे में क्या करें, जब परखने की शक्ति निर्णय करने की शक्ति इस जगह एक तो जरूरत बहुत है कि कोई भी आत्मा के लिए वो नहीं हो हमारा अति का भाव, न वैर भी हो, क्योंकि जिससे स्नेह होगा दूसरे से वैर भी होगा, जरूर होगा। तो इसीलिए ऐसा भी न हो और किसी से वैर नहीं है तो उससे फिर स्नेह होगा और बराबर का स्नेह चलता रहेगा। तो एक तो निर्णय करने की शक्ति, फिर इसके बाद कौन सी शक्ति चाहिए, दूसरा निर्णय करा आपने, पहचान भी लिया कि ये माया है, इस आत्मा की तरफ मुझे ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, सामना करने की शक्ति। क्योंकि पेपर आया, प्रॉब्लम आई, परीक्षा आई, लेकिन सामना भी तो कर सके, निर्णय तो कर लिया कि ये गलत है ये सही है, तो वो सामना के लिए उसमें ये श्रीमत रूपी बाप का हाथ और साथ ये बहुत आवश्यक है। बाबा आओ, होता क्या है अक्सर करके हम मनुष्य आत्माओं को पहले याद करते हैं। द्रौपदी की भी कहानी आप सबने सुनी होगी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उसने याद किया कृष्ण को, कहानी में जैसे आता है कि भगवान आने में आपने बहुत देरी की, तो बाबा ने यही भगवान यही कहा कृष्ण ने कि हे द्रौपदी तुम याद करो कि तुमने किस किस को याद किया, पहले पांचों पति को याद किया, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सबको, जब कहीं से भी तुम्हें कोई मदद नहीं मिली तब तुमने मुझे याद किया। ऐसे हमारे साथ भी होता है, हमें कोई ऐसा याद आता है कि अच्छा ये है, इनसे भी ऊपर यज्ञ में वो है, फलाने से जाके हम ये बात कहेंगे, और इनसे ऊपर वो है, व्यक्ति याद आते हैं, हाँ उसमें उस स्वरूप में उसको ध्यान में रखना है, लेकिन मदद बाप की एक बाप की ही लेनी है। तो इस तरह सामना हमारा वो होता है, सामना के लिए बाबा की मदद ये बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात इसके साथ अनेक, जब बाबा का हाथ और साथ मिल जाता है मिलता रहता है, तो इसमें हमें एक बात सदा बुद्धि में रखनी है, हमारा ये सारा पुरुषार्थ किसके लिए चल रहा है, हमारा ये सारा पुरुषार्थ वापस घर जाने के लिए, अंतिम समय के लिए चल रहा है। बस अब घर जाना है, जैसे दीदी को भी था, बड़ी दीदी को, तो इसमें अंतिम हम परम धाम में जा ही तब सकेंगे, अपनी सीट पर बैठ ही तब सकेंगे, जब हम जिस स्थिति में वहां से आए थे उस स्थिति में ही उतने ही पवित्र बन के जाएंगे। इस उसमें हमें मामा की एक बात याद आ रही है, हमने भी सुनी ही है कि 65 में मामा ने शरीर छोड़ा, तब तो साकार बाबा भी थे, तो मामा ने जब शरीर छोड़ा और वहां पर मामा सूक्ष्म वतन में गई, तो वहां पर बाप दादा सूक्ष्म वतनवासी बैठे थे, उन्होंने कहा आओ मामा, आपने कर्मातीत अवस्था का अनुभव किया? तो मामा चुप रहे। फिर मामा ने कहा नहीं बाबा, मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। अरे बिना कर्मातीत स्थिति का अनुभव किए बिना तो कोई जा ही नहीं सकता ऊपर, तो इसीलिए परमधाम में तो जाओ। अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है, बाबा भी और सब बच्चे आवाहन कर रहे हैं तुम्हारा, जाओ शरीर में प्रवेश करके थोड़े समय के लिए भी कर्मातीत अवस्था का अनुभव करके आओ। तो मामा को भेजा बाबा ने, मामा नीचे आए तो उसके बाद थोड़े समय रहे इधर और फिर ऊपर गए। तो फिर बाबा ने पूछा मामा अनुभव किया? तो मामा ने कहा नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि बाबा जब मैं गई तो शरीर तो एकदम ठंडा पड़ गया था और उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई, हलचल नहीं हुई, तो मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अभी तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़े और जाके उस नए जन्म में पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हें कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना पड़े और पवित्रता की वो स्टेज धारण करनी पड़े जिस स्टेज पर तुम परमधाम में थी और वो पवित्रता की स्टेज से नीचे आई, तो अपनी ही सीट पर जाके तभी बैठ सकेंगी जबकि पवित्रता की वो अल्टीमेट स्टेज होगी, वो धारण की होगी। तो इसलिए जाओ। और हर बच्चे को भी यही कहना, हर एक बच्चे को कर्मातीत अवस्था का अनुभव किए बिना वो परमधाम नहीं जा सकता। ये जैसे कि श्रीमत की अल्टीमेट चीज है, हमारा सारा पुरुषार्थ उस अंतिम समय के लिए ही हो रहा है। तो देखो जब मामा बाबा किसी को भी कोई कंसेशन नहीं, बड़ी बड़ी दादियां वगैरह बाबा बताता है, वैसे हिसाब किताब बहुत कुछ चुक तू कर लिए हैं, लेकिन जो थोड़ा बहुत रह गया है उसके लिए वो पुनर्जन्म सबने लिया है, ले रहे हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें किसी भी हालत में अपने वर्तमान पुरुषार्थ से ना वो नहीं होनी चाहिए कि ये मैं ऐसा क्यों, मुझे धन की कमी है, पुरुषार्थ की हेल्थ खराब है, ये तो मैं कैसे संपूर्ण बनूंगा, इससे अच्छा तो चलो ये शरीर छूटे और नया शरीर ले, बच्चे का शरीर ले तो नया पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा किसी भी हालत में कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये शरीर छूटे। तो सबसे बड़ी श्रीमत एक तो यही है साथ में कि ऐसी पुरुषार्थ, ऐसा संकल्प हमारा कभी नहीं होना चाहिए कि हम ये शरीर छोड़े। चाहे जितनी भी परीक्षाएं आए इस शरीर में, जितनी भी तकलीफें हो, शरीर की तकलीफ ही हो, संबंध की हो, कोई भी हो, लेकिन शरीर नहीं बाबा, मुझे तो संपूर्ण बनना ही है इस शरीर में, बस संकल्प तो रखें। वो संकल्प बाल बार बाबा तक पहुंचेगा तो परिस्थितियां भी वैसी बनती जाती हैं, बीमार शरीर भी ठीक होता चला जाता है, कोई समस्या धन की होती है वो ठीक हो जाती है, सब ठीक होंगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मैं ये शरीर छोड़ूं और शरीर छोड़ के जाके नया शरीर लूं। तो एक ये श्रीमत बाबा ने कहा, ये सदैव इसकी हमारी बुद्धि में रहे, इसका हाथ और साथ हमें सदा चलना चाहिए और ये सारा हमारे संकल्पों पर आधारित है। आप सबको मालूम है मन मन जीते जगत जीत बोलते हैं ना, मन की बात। एक राजा के पास एक व्यक्ति भिक्षा पात्र लेके आया और उसने कहा राजन मुझे भिक्षा दे दो इसमें। तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्री को बोला और कोष में गया, अशर्फियां मोहरे सोना चांदी बार बार लाता था, एक बार दो बार दस बार बीस बार, लेकिन वो भिक्षा पात्र भरता ही नहीं था, देखने में तो छोटा ही था भरता ही नहीं था। तो राजा ने कहा, पूछा उससे, महाराज जरूर इसके अंदर कोई रहस्य है, क्या रहस्य है आप बताएंगे? तो उसने क्या बताया कि राजन ये भिक्षा पात्र मनुष्य की खोपड़ी का बना है, सिर का, खोपड़ी का। खोपड़ी में यहां मन होता है, आत्मा मन हम सब जानते हैं। तो मन की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा पूर्ण होगी तो चार और इच्छाओं का जन्म होगा, चार इच्छा और होंगी तो दो चार और पैदा हो जाएंगी, इसलिए ये भरता नहीं है। तो अभी हर बच्चे को ये कहना है, हम अपना सब वो वहां पर ना, राजा की बात में समझ आई राजा को, तो इससे निष्कर्ष ये निकला, बाबा ने कहा कि हर बच्चे को ये कहना है कि अब मुझे बस समेटने का शुरू कर देना चाहिए। विस्तार हो, सेवा का भी विस्तार हो, लेकिन मन से अंदर ही अंदर हम समेटते चले, जिससे कि अगर मन के अंदर समेटा नहीं, मन में एक इच्छा हुई दूसरा हुई चौथा हुई, इच्छाएं तो सबकी पूर्ण कभी होती नहीं। इसीलिए फिर हर हालत में हम लोगों का पुरुषार्थ अधूरा रह जाएगा और फिर नया सिरे से पुरुषार्थ करने के लिए नया जन्म लेना पड़ेगा। तो आवश्यकता इस बात की है, एक तो कि एक हमें ये दो शक्ति चाहिए। वो दूसरा बाबा ने कहा है श्रीमत, क्योंकि हर समय प्रमाण श्रीमत बाबा की बदलती रहती है। मुझे याद है जब शुरू शुरू में हम लोग ज्ञान में आए थे 19 पहले, तो बाबा कहते थे ये शिवलिंग हाँ अंगुष्ठाकार है, बड़ा है, फिर धीरे धीरे छोटा आया, बिंदी स्टार स्वरूप आया। और बाबा शुरू में कहते थे, ज्ञान कहता था देखो बच्चे मनसा में तूफान तो अंत तक आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है, विकर्म कर्मेंद्रियों से बनता है, इसीलिए विकर्म नहीं करना है। फिर धीरे धीरे बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से तो नहीं करना, लेकिन वाचा से भी किसी को कष्ट नहीं देखना है, अगर दुख दिया तो दुखी होकर के मरेंगे। फिर बाबा और मनसा में भी ले आए कि मनसा के संकल्प में भी किसी के प्रति भी दुर्भावना न हो, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो। तो ज्ञान भी हमारा स्थूल से धीरे 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 सूक्ष्म होता जा रहा है। तो इसीलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, ये भी श्रीमत है। और ये कैसे रखेंगे, क्योंकि अभी हमारा संसार ये छोटा ही हो गया है, बाहर की दुनिया वाले अगर कोई विकर्म करते हैं हमें खराब नहीं लगता, लेकिन अगर अपने बीके कोई ऐसा विकर्म होता है तो हमें ये लगता है कि अरे इतने साल से ये चलने वाला, अभी भी इसके द्वारा ये विकर्म हो रहा है, अभी भी ये बाहर का खाते हैं, अभी भी पिक्चर देखते हैं, अभी भी ये है आदि आदि। तो होना ये चाहिए कि जिस आत्मा को भी हम देखें ना, हमारा हृदय जो है इतना विशाल हो जाना चाहिए कि बस उसको देखते हुए भी ना हम उसको क्षमा कर दें, माफी दे दें, उसके प्रति निगेटिव भावना ना आए, दुर्भावना ना आए। बाबा इसको भी बुद्धि को शुद्ध करो, ये आत्मा भी ज्ञान में और आगे बढ़े। तो उससे क्या होगा फायदा, क्योंकि हमें मन ही केवल शुद्ध नहीं करना है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंतिम जन्म तक, संगम युग के अंतिम जन्म तक हमारा ये पुरुष और प्रकृति का खेल है, आत्मा और ये शरीर, इन दोनों को हमें शुद्ध करना है, शुभ करना है। इस रेफरेंस में मैं अपनी भी एक बात बता दूं, मेरा लौकिक जब बाबा से पहली बार मिले, बाबा कानपुर में आए हुए थे, तो बाबा ने पूछा, सब लोग लखनऊ वाले मिलने गए कानपुर में, तो बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो मेरा लौकिक नाम मतलब श्री है, तो बाबा ने फिर पूछा, तो मैंने बताया ऐसे श्री सिंगल सरनेम है, तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, अभी तो श्री का टाइटल ब्रह्मा बाबा भी नहीं लगा सकता, श्री का टाइटल तो लगता ही उन्हें है जो देवी देवता होते हैं, जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हों। अभी तो किसी के भी आत्मा और शरीर पवित्र नहीं है, शरीर भी विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा भी इतने 84 जन्म भोगते भोगते अंतिम में बिल्कुल अपवित्र हो गई है। तो इसीलिए अभी तुम्हें श्री जैसा बनना है, अब बाबा तुम्हें नाम मोहन देता है, तो तब से बाबा का दिया हुआ नाम मोहन हो गया और श्री जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये नहीं समझना कि ये तो बाबा ने हमें नाम दे दिया, लेकिन दादियों को दिया है, बहुत दादियों को, हम सब तो बाद में आए हैं, नहीं, सभी को बाबा ने कुछ ना कुछ संपूर्णता के लिए ये दिया है कि ये आपका अंतिम पुराना शरीर है, भले आपका शरीर वो का वो ही है, वही संबंध है, लेकिन आपको यही समझना है मेरा नया जन्म हुआ है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पवित्र हूँ। तो वो हम सब का जन्म पवित्र ब्राह्मण की तरह है, तो इसीलिए एक हमें ये देखते चलना है कि बाबा की श्रीमत कितनी दी है बाबा ने और हमें कैसे उन्हें संपूर्णता से पालना करनी है। तो इसीलिए मन को, बाबा ने भी मन को वशीभूत करने के लिए मन को पत्र लिखा था, आप सबने भी सुना होगा ना, पहले तो बाबा ने ये अनुभव करते थे कि भाई मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला, आप सबको मालूम ही है, पुराने बाबा के बच्चे हैं, तो उससे क्या, बाबा को इतना अभ्यास पक्का हो गया था कि बाबा जिसको भी देखता था ना, बस एकदम आत्मा की भासना उसे भी आती थी, आओ बच्चे, बाबा कहता आओ आओ स्वीट बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ, जैसे बाबा हाथ फैला देते था, हम बाबा की बाहों में चले जाते थे और तुरंत ही अशरीरी हो जाते थे, देह का भान भूल जाता था। अब बाद में तो बाबा मिलते भी नहीं थे अंतिम 2-3 साल, क्योंकि फिर व्यक्तियों से इन्फेक्शन वगैरह न लगे, डॉक्टर ने बोला हुआ था, तो बस दृष्टि देते थे और जैसी बाबा की दृष्टि पड़ी व्यक्ति अशरीरी हो जाता था, हम सब देवान से न्यारे। तो ये भी एक श्रीमत है, हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान। अंत समय बहुत लोग आएंगे हमारे पास, लेकिन हमारा ऐसा ज्वालामुखी स्वरूप हो कि देखते ही हम तुरंत ही बस वो दृष्टि उस पर पड़ते वो अशरीरी हो जाए, देहभान से न्यारा हो जाए, क्योंकि हमें दोनों की आत्मा तो यही जाएगी सतयुग में, लेकिन शरीर भी ये न सही, लेकिन इन 5 तत्वों का बना हुआ ही तो शरीर वहां मिलेगा, तत्व यही होंगे ना, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश। तो हमें इन तत्वों के साथ मित्रता करते हुए इनके गुण धारण करना है, जिससे अंत समय में ये तत्व जो है हमारा पूरा साथ है। बाबा ने कहा है बच्चों का अगर स्थिति बहुत अच्छी होगी, बाबा जो टच करेगा उनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होगी, तो उनके पैर उधर ही बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। तो इसीलिए श्रीमत का प्रमाण हम कोई भी काम करते हैं उसका प्रमाण होता है ना, मानो हमने मेला किया, प्रमाण है भाई मेले के लिए इतने सारा वो करा, मेहनत करी, स्टॉल लगाए, वो सब, कोई भी चीज का प्रमाण, रिजल्ट, आउटपुट अगर मिलता है तो अंदर हमें खुशी होती है। तो इसीलिए इन तत्वों को भी हमें पावन बनाना है, जैसे बाबा ने भी पावन बनाया अंतिम समय में, और वो पावन बनाया बाबा ने हमें भी किस तरह कि एक एक तत्व को, जो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, इन सब से ये बना शरीर है ना, तो ये जो है, ये तत्व जो है अंत तक हमारा साथ दे। ऐसा नहीं तो अक्सर भक्ति मार्ग में बोलते हैं, जिसके किसी का कोई संस्कार होता है, अगर किसी को याद करता है, जब तक वो व्यक्ति याद आता रहेगा तो शरीर नहीं छूटेगा, और जब व्यक्ति सामने आएगा, दिख जाएगा, बात हो जाएगी या कुछ, फिर वो आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, भक्ति में भी बोलते हैं। तो हम सब भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, ये होना चाहिए। अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने का मतलब क्या हुआ, जैसे भीष्म पितामह का है ना, वो अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, ब्रह्मा बाबा ने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा। मुझे याद है जब मेरे आसाम जा रहा था तो मेरी इच्छा नहीं थी, बाबा ने कहा जाओ बच्चे वहां पर जाके तुम्हें सेवा करनी है और बाबा तुम्हें अंत समय भुला लेगा। अब बाबा ने कहा, उस वक्त तो हमने कोई खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाबा ने ऐसा सेवा का वो बनाया कि हम 17 जनवरी 1969 को अपने लौकिक पिताजी के साथ यहाँ पहुँच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। तो उसमें हमने क्या देखा, बस बाबा ने ना जितने पेंडिंग काम थे, बचे हुए काम, वो सब जैसे 2 दिन में भी निपटा लिए। उससे पहले जब भी हम लोग बाबा से मिलते थे तो बाबा कहते, हाँ बच्चे क्या पूछने आए हो, क्या प्रश्न है तुम्हारा, हम लोग बताते थे, बाबा उत्तर देते थे। लेकिन इन 2 दिन में हमने देखा कि हम बाबा के सम्मुख गए, बस बाबा ने नैनों में देखा, और नैनों में देखते ही, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा, यानी मन का प्रश्न भी बता देते थे और उसका समाधान भी कर देते थे उत्तर। तो बाबा की ये कर्मातीत अवस्था का एक लक्षण है, जो हम सबको भी अपने अंदर लाना है। और ये कब होगा, जब हमारा मन बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, और मन के अंदर ना दूसरे के मन के भावों को हम तब पढ़ सकते हैं जब हमारे मन में अपने कोई भी व्यर्थ फालतू कोई संकल्प नहीं होंगे, नहीं तो वो संकल्प उससे मिल जाएंगे और हम दूसरे के सही बातों को नहीं पढ़ सकेंगे। इसीलिए वो एक तो बाबा में हमने देखा प्रैक्टिकल, दूसरा देखा कि बाबा का ना जो नक्की लेक का म्यूजियम है, वो बाबा ने पहले से क्लियर नहीं किया था, लास्ट डे फाइल में साइन किया, अच्छा उसे ले लो, उसमें सेवा का साधन बनाओ। तो वो बाबा का अंत समय, उसके द्वारा कितनी सेवा हुई। रोज रात को क्लास 9 बजे होती है, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही क्लास का अनाउंस किया, आज बाबा 7 बजे क्लास कराएगा, और बाबा सब बच्चे भोजन करके आए, ये बाबा की खास इंस्ट्रक्शन थी, भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को मालूम था, आभास हो गया था कि बस अगर भोजन करके नहीं आएंगे तो बाबा तो क्लास करा के तुरंत शरीर छोड़ने का बाबा को तो आभास हो गया था कि बस ये शरीर आज अंतिम दिन है, तो इसीलिए तो बाबा ने सब बच्चों को वही इंस्ट्रक्शन दिया। ऐसे ही हम भी सब ये इच्छा रखे कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। अपनी इच्छा से कब छूटेगा? जब ये तत्व हमारा साथ देंगे। पांच तत्वों का शरीर हम ऑर्डर करेंगे तब आत्मा को ये छुट्टी देगा, और ये आत्मा तब शरीर छोड़ के जाएगी। लेकिन वो कैसे होगा? जब दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, मित्रता होगी। मित्रता होती है आपस में तो एक दूसरे की रक्षा करते हैं, मित्र दूसरे के प्राण नहीं लेते। तो जल हमारे प्राण नहीं ले सकता अगर जल का हमने मुख्य गुण धारण किया होगा। बहुत फ्लड आए, सुनामी आए, आजकल भी आधे भारत में पानी बहुत आया हुआ है, विश्व भर में आया हुआ है, बहुत पानी के द्वारा लोग विनाश हो रहा है। तो पानी का सबसे बड़ा गुण कौन सा होता है? शीतलता। लेकिन एक पानी का गुण होता है एडजस्टमेंट। पानी हर एक में सेट हो जाता है। गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में, चम्मच में लो, चम्मच में, थाली में लो, थाली में। ऐसे ही पानी की तरह हमारा स्वभाव भी एडजस्टमेंट का हो, हर एक से हम एडजस्ट होके चल सके। ये नहीं कि सास का इस बहू से नहीं हो रहा, बाप का बेटे से नहीं, या कोई भी आपस में संबंधों में कटुता है, इनसे तो एडजस्ट होके चल सकते हैं, इनसे नहीं चल सकते, ऐसा नहीं। सबसे एडजस्ट होके चलेंगे तो जल जो है कभी भी हमारे प्राण नहीं लेगा, क्योंकि जल के साथ हमने इतनी मित्रता बना ली, एडजस्टमेंट की शक्ति, जल की शक्ति, कि जल अंत समय तक ना हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह पृथ्वी में क्या गुण होता है? सहनशीलता। पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है पृथ्वी दाता है, हर चीज देती है, अन्न भी देती है, गेहूं, चावल और पानी और पेट्रोल, हर चीज पृथ्वी से हमें मिलती है, दाता है। ऐसे हम भी दातापने का गुण धारण कर लें। कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं है, वो तो लिमिटेड है, हम दें हमारे पास हो ना हो, लेकिन हर एक को हम प्रेम, स्नेह, सहयोग, उसको उस जीवन के ना जो गुण है, मूल्य है, स्नेह है, वो देते चले। उसमें तो खर्च होता नहीं कुछ। किसी भी आत्मा हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतन। तो अगर पृथ्वी की तरह हम ये दाता हो गए तो अब पृथ्वी में जितनी भी हलचल होगी, उसमें अर्थक्वेक आएगा, हलचल होगी, बिल्डिंग गिरेंगी। बाबा कहता यहां तक, इतनी दूर तक वो आएगा, लेकिन आपके पास तक विनाश के लिए नहीं आएगा, आपके प्राण नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि आपने पृथ्वी तत्व को अपना मित्र बना लिया, तो इसीलिए पृथ्वी आपका प्राण नहीं ले सकती। इसी तरीके से वायु में क्या गुण होता है? वायु हर चीज को हल्का बना के उड़ाती है, ऊपर ले जाती है। तो ऐसे ही हम भी इतने हल्के रहे, कोई भी परिस्थिति आए भारी ना हो, हल्के अगर रहेंगे हम सदा उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। जो बाबा कहता है जितने हल्के होते जाते हैं, पहले तो बाबा कहता है पुरुषार्थ करो, चलो पुरुषार्थ में, चलने के बाद दौड़ना शुरू हुआ, दौड़ने के बाद और हाई जंप बाबा कहता है दो, फिर बाबा कहता है और फरिश्ता बनो हल्के, और जितना जितना हल्के होते जाएंगे उतना उतना आत्मा संपूर्णता की ओर जाती जाएगी। और देखो पृथ्वी और वायु दोनों विपरीत गुण वाले हैं, पृथ्वी नीचे खींचती है और वायु ऊपर ले जाती है, लेकिन दोनों सदा जीवन भर साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों में जो विपरीत गुण भी हो लेकिन साथ साथ रहते हैं। ऐसे परिवार में हमारे जो भाई बहन सास बहू बाप बेटा कोई भी हो, भाई भाई विपरीत गुण भी हो, विपरीत हो स्वभाव, लेकिन कभी भी छोड़ने का और साथ तोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह आकाश कितना विशाल होता है, हमारा हृदय भी इतना विशाल हो जाए कि बस हर एक को हम क्षमा कर सके। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, वीर क्षमा कर पाएगा। तो यहां तो सब महावीर ही बैठे हुए हैं, तो इसीलिए वो धारण करो जिससे कि हम वो कर सके, क्षमा कर सके। दादियों में, बाबा में, मामा में, सब में देखा क्षमा का गुण जब तक हम में नहीं आया, किसी ने हमारे साथ खराब किया और हम भी बदले की भावना अंदर ही अंदर अगर हो तो महान नहीं बन सकते संपूर्ण। और इसी तरह अंतिम तत्व है एक सूर्य। सूर्य गर्मी देता है और अग्नि, अग्नि तत्व। तो अग्नि में ये गुण होता है हर चीज का रूप बदल देती है। तो बाबा भी कहता है आपका भी स्वरूप ज्वालामुखी स्वरूप हो, अग्नि तत्व जैसा, जिससे कि आप दूसरों के स्वरूप बदल सको। बच्चे कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं सब है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी तक आते हैं, विकारी संकल्प नहीं आते, व्यर्थ संकल्प आते हैं। एक मूर्तिकार था, तो मूर्ति बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था, तो लोगों ने कहा आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बनाते हो। तो उसने कहा अरे भाई मैं तो मूर्ति बनाता नहीं हूँ, मूर्ति तो अपने आप प्रकट इसमें से होती है पत्थर में, मैं तो बाहर के जितना व्यर्थ है ना उस व्यर्थ को निकाल देता हूँ, तोड़ देता हूँ तो अंदर से मूर्ति प्रकट हो जाती है। बस अभी यही आवश्यकता है हमको व्यर्थ को निकालने की, और अपनी अंदर की नेचर जो है ना बाहर की नेचर के साथ हम उसको एडजस्ट करके चल सके। जो बाबा कहता है ये अंदर का स्वभाव है और ये बाहर, तभी प्रकृति के पांचों तत्वों के साथ सतयुग के साथ हम उस तरीके से मिलकर ही चल सकेंगे। तो समय तो हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा का हाथ और साथ, कई चीजों में बाबा ने कहा है, हर एक तो बाबा ने कहा है देही अभिमानी बन के रहना, 8 घंटा याद की यात्रा, और बाबा ने बिंदी का कहा है हर जगह 3 बिंदी लगाने का, आत्मा परमात्मा, कोई भी पास्ट की बात हो जाए उसे तुरंत ही बिंदी लगा के खत्म कर दें। और साथ के अंदर बाबा ने और क्या कहा है कि किसी के प्रति भी, एक भी आत्मा के प्रति और वैर भाव और ऐसा न रहे। रहम दिल और दातापन का संस्कार, ये बाबा ने कहा वर्तमान समय होना बहुत आवश्यक है। बहुत दुखी आत्मा है अभी, चारों तरफ दुखी दुख। अब थोड़े दिन पहले भोग लगाया संदेशी ने, तो संदेशी ने कहा कि बाबा ने कहा है अभी तो पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं देखा, थोड़ा सा ये कोविड का देखा, अभी तो उससे ज्यादा भयानक परिस्थितियां आने वाली हैं। तो इसीलिए उसके लिए क्या करेंगे, बाबा ने कहा जब तक इतनी दुखी आत्माएं अशांत चिल्लाती हैं और वो आपको कानों में उनकी आवाज नहीं सुनाई पड़ती क्या, तो रहम दिल बन करके उन आत्माओं को आप दाता बन के दान देते चलो। जो बाबा ने दान का बताया, जो रहम दिल होगा वही दाता होगा। कोई भिखारी आता है, वो आप जा रहे हैं, कोई माता आई, छोटा बच्चा है, ये नहीं है आप कुछ पैसे खाने की चीज, रहम आता है दे देते हैं। ऐसे ही हम दाता बन करके ना, जो बाबा ने गुण और शक्तियां बताई हैं, वो रहम दिल बन करके, दाता बन करके देते चलेंगे, तो इसके अंदर हम बहुत जल्दी ही संपूर्णता को प्राप्त हो करके इसके अंदर हम वो जो बाबा चाहता है, हम बच्चों से यही चाहता है बाबा कि बस एक एक जिसे शांति की आवश्यकता है उसे शांति, जिसे शक्ति की आवश्यकता है, जिसे खुशी की आवश्यकता है, जिसे प्रेम की आवश्यकता है, उन आत्माओं को हम देते चले। और वो तब होगा जब पहले हम उन्हें पहचान सकेंगे, उनकी बात को जान सकेंगे। और वो कब जान सकेंगे? जब हमारे अपने अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं होंगे, तो दूसरे के अंदर की बात को पहचान करके ना, उसके बाद उस आत्मा की मनो इच्छा को हम सदा के लिए पूर्ण कर सकेंगे, शुभ इच्छाओं को। तो अभी इन चीजों की आवश्यकता है, और इसके लिए अंदर जाने की। बाबा ने कहा है कि हमारा जो वाइब्रेशंस हो, हमारी वृत्ति, वृत्ति के ऊपर बाबा पिछले काफी समय से जोर दे रहे हैं, हमारी वृत्ति ऐसी हो बहुत शुद्ध, बहुत महान, तो वृत्ति से क्या होगा, वाइब्रेशन बनेंगे। वो वाइब्रेशन जितना चारों तरफ फैलेंगे, त्रेता युग के बाद से लेकर द्वापर युग से सारा वाइब्रेशन का तो भक्ति का खेल है। वाइब्रेशन में साधु संत जंगलों में है, अकेले है, भयंकर पशु आ रहे हैं, फिर भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं। तो वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, और फिर वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। तो हम सब आपको अब वायुमंडल ऐसा बनाना है। अभी तक लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छे काम कर रहे हैं ये, लेकिन ऐसा वायुमंडल बनाए जो वो कहें कि हाँ ब्रह्मा कुमारी तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला परमात्मा भगवान है, और भगवान के द्वारा ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य हो रहा है। तो अभी उस चीज की हम बच्चों को आवश्यकता है। वृत्ति अंदर से जितनी बदलेगी, उतने हमारा वाइब्रेशंस ऑरा पॉजिटिव होगा, और जितना ऑरा पॉजिटिव होता जाएगा। और वो मुझे याद आता है, मैं कुछ साल पहले रशिया गया था, तो बहन जी ने कहा यहाँ पर ना ऑरा किरलियन एक फोटोग्राफर होकर के गया था, कैमरा उसने ऐसा बनाया था जिससे वो किरलियन फोटोग्राफी करता था, तो उसमें व्यक्ति का ऑरा भी आ जाता था। तो वो एक दिन उसने पूरा हम लोगों को दिया, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक पूरा ये इसने ऑरा निकाला, एक एक अंग का। वहां हमारा, हम वहां गए हुए थे जब बहन जी ने परिचय कराया, साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के हैं, और इनको ऑरा का पूरा काफी साइंस में इन्होंने पढ़ा हुआ है। तो उसके साथ रहा, और उसने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पर रशिया में जो आते हैं, कई लोग हमारी इंस्टीट्यूट में आते हैं, और वहां पर हमारी माने ऑरा इंस्टीट्यूट जो उनका है, किरलियन इंस्टीट्यूट बोलते हैं, किरलियन साइंटिस्ट का नाम था। तो वहां पर आते हैं, उनके ऑरा हम नापते हैं बहुत बहुत, लेकिन अभी तक हमने जितनों के भी ऑरा देखे हैं, सबसे अच्छा शुद्ध पवित्र ऑरा ब्रह्मा कुमारी वालों का होता है, जो बाबा ने, ये वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं। तो बाबा ने भी कहा था अंत में, अभी तो लोग बोलते हैं कि हाँ ब्रह्मा कुमारी भी एक संस्था है, ब्रह्मा कुमारी भी ज्ञान देते हैं, और ऐसा समय आएगा जब वो बोलेंगे कि ब्रह्मा कुमारी ही संस्था है जो भगवान का सच्चा ज्ञान देती है। अब वो समय आ रहा है, आ गया है देखने में, इसीलिए अब बस देरी हमारी इतनी है कि बाबा का हर जगह हम चेक करते चलें कि श्रीमत का बाबा का हाथ और साथ हमने कितना पकड़ा है और कितने तक रहना है। ओम शांति, ओम शांति। 11 बजे तक ही है ना, या अभी योग है आप लोगों का है? अच्छा 11:15 से। हाँ, और ये किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं जी मन को क्या, हाँ मन को पत्र। अच्छा अच्छा तो बाबा ने 1936 में ना जब ज्ञान में आए और बाबा ने ट्रस्ट भी बनाया बहनों का, लेकिन बाबा ये अनुभव करते थे कि मन मेरा भाग जाता है बीबी, जैसे हम सब लोगों का शुरू में कि मन कभी परिवार की तरफ चला जाता है, संबंधियों की तरफ, प्रोफेशन की तरफ, धन दौलत की तरफ, सब तरफ मन बार बार भाग जाता है। तो बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा मन को? कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं और तू मेरा मंत्री है, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वशीभूत कर लिया, तू ज्यादा शक्तिशाली हो गया और तू जहां जहां भागता रहा मैं भी तेरे पीछे पीछे राजा होकर भागता रहा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, दो पत्र लिखे, एक मन वो यहाँ पर अवेलेबल था, उसकी कॉपी हम सब लोगों को मिली थी। हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और मैं आत्मा राजा भी तुम्हारे कहने पर पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुम्हें कह देता हूं हे मन, हे बुद्धि, कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं। अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। और वही बाबा ने कहा, इसीलिए रोज रात को बच्चों बैठ करके मन बुद्धि संस्कार की दरबार लगाओ, कहा है ना कई बार बाबा ने। तो बाबा ने ये पत्र लिखा मन को और बुद्धि को, हम लोग भी ये चेक करें कि वास्तव में मैंने भी मन और बुद्धि को ऐसे पत्र लिखे हैं, ऐसा करा है। क्योंकि जब तक ये मन को हम जीतेंगे नहीं, केवल कहते ही रहेंगे क्या करें, व्यर्थ संकल्प आता है तो वो तो कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन जीत, मन को, मन यानी विचार संकल्पों को हमें अपने वश में करना ही है। और वो कैसे करेंगे? वो होगा, शुरू में मन जाएगा थोड़ा, लेकिन अगर हम बार बार मन को अपने अधीन खींच कर लाने का करते हैं, न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कल अब पहले भी हम ही विजयी बने थे, अभी भी बन रहे हैं, अब बार बार यही संकल्प लाए, कल अब पहले भी बाबा मैं विजयी बनी थी, बना था, अभी भी बन रहे हैं और कल अब आप हमें इसी तरह विजयी बनाते रहेंगे। बस उसी निश्चय पर रहे, ये संकल्प कभी ना, पता नहीं कब व्यर्थ संकल्प जाएंगे, हम विजयी बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं, मुझे विजयी बनना ही है, मैं कल्प पहले वाली विजयी आत्मा हूं। तो उसमें जब हम रहेंगे जितना उस नशे में, तो बाबा भी बंधा हुआ है हमें विजयी बनाने के लिए। तो इसीलिए बाबा का जो जो चीजें बाबा ने बताई है, उन चीजों में हम पुरुषार्थ करते रहे, हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा, हमें ही बनना है। ये इसीलिए हम अंदर की तरह ना, वो कहते हैं तीन प्रकार की मुख्य समस्याएं होती हैं, समस्याएं तो बहुत आती हैं, लेकिन हम स्वस्थिति इतनी पावरफुल बना लें कि परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर ले। हम देखते थे ब्रह्मा बाबा को ना, कई बार खांसी आती थी, मुरली चलाते चलाते बहुत खांसी आती थी, तो बाबा क्या करते थे, वहाँ पास में लक्ष्मी नारायण का, श्री कृष्ण का चित्र होता था, तो हमें लगता था बाबा को बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन वो परिस्थिति, खांसी रूपी परिस्थिति जब आती थी तो बाबा कहते तो, देखो बच्चे अभी तो ये खांसी रूपी परिस्थिति है, तत्व भी तमो प्रधान है, शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी अभी तमो प्रधानता से निकलकर सतो प्रधान बन रही है, खांसी आती थी। फिर बाबा कहते थे बस बाबा कल जाके ऐसा मिशनु कृष्ण बनेगा, चित्र कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का रहता था, कल ऐसा सतो प्रधान बनेगा, कृष्ण बनेगा, और ये तत्व भी सतो प्रधान बन जाएंगे, कोई खांसी नहीं होगी, कोई शारीरिक व्याधि नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, और बस ऐसे ही बाबा कहते 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 खांसी कब खत्म हुई और कब बाबा फिर मुरली चलाने लगते थे, शक्तिशाली हो जाते। तो इसीलिए अभी जो है बाबा ने जैसे मन को पत्र लिखा, ऐसे हम सबको भी अपने मन से वार्तालाप करना चाहिए रोज, और वार्तालाप करके देखें कि मन मेरे कहे बिना तो मेरी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर रहा है, ऐसा है। और है? नहीं बताया ना ममा ने, तो जहां कही भी है तो बाबा, जब जब जो राज खोलेगा, जब ममा का भी राज खोलेगा बाबा, तब आपको भी हमें भी पता चल जाएगा। अभी तक बाबा ने जो जो राज ज्ञान के खोले हैं वो ही बता सकते हैं आपस में डिस्कस। जो बाबा ने बात बताई नहीं है कि कब विनाश होगा या कब ममा का जन्म होगा, कहाँ होगा, बाबा ने बताया नहीं, तो हम सब लोग भी कोई भी बता ही नहीं सकते हैं। ममा की बात भी जब बाबा खोलेगा राज, तो आपको, हमको, सबको पता चल जाएगा।